con Ulrika che via gli altri. Forse gli uomini lo sa.
और मैं जैसा मानती हूँ वैसा ही भगवान को देने से भगवान खा लेते हैं ना, कोई पेट से पत्ता वत्ता कुछ दिया जाता है। और मेरा विचार क्या है, अरे भगवान ये बकरी बकरी सो करके मेरा चीज खाते हैं, ये तो नास्तिकता है। मंगलानी है ऐसा घर छाकला पाता खा पाता खे सब गिर जा। तो भगवान की बकरी है ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अपराध हो जाता है। भगवान जो चीज खाने पीने अभ्यास है भगवान का, वही चीज दिया जाता है, वही होती है। हमारे खुशी नाती नहीं देना चाहिए। और क्या खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, और क्या साग सब्जी बोलना है, और क्या है दूध दही चीनी शहद पनीर मक्खन खाते
हैं, खाते
खाते नहीं है, खाते नहीं है भगवान
सेवा लेते हैं भक्तों का, तो दिल भक्ति वही लेते हैं, रूप में वही रूप में लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो क्रियापद जो है वार्थ जो है और स्नान इधर उधर नहीं करना है।
दाल पूरी भी लेते
हैं, भक्ति भरी स्नान प्रजाकार मना है, भक्ति भाव लेकर के मेरा भक्त जो कुछ दे रहे हैं ये हो अपने आदर जतन पूर्वक मैं
लेते हैं,
खाते हैं। अष्टमी में खाना खाते हैं ऐसा दिखा है, आदर नहीं करना चाहिए।
गुरुवार से दाल पूरी लेते हैं,
हाँ
दाल पूरी लेते हैं, दाल पूरी लेते हैं,
सब कुछ भक्ति भाव लेकर के देना है। सत्विक जो भाव है, सत्विक जो चीज है, सत्विक चीज सत्विक भाव लेकर के भक्ति भाव श्रद्धा पूर्वक देना।
अब ये तो महाराज सबने जो दूध दिया था, गणेश जी और महादेव जी और
मैंने बोल दिया, और कुछ है लड्डू है कचौड़ी है चकाचक है ये भी भगवान को दिया जाए कोई बात नहीं।
ये महाराज जी उसके लिए बोल रहे हैं,
अभी जो
सच दिखलाते हो ऐसे इंद्र जा रहा है तो देखने में ऐसा लगता है लेकिन कुछ नहीं है उसमें।
वहाँ तक
आया तो करे तो ठीक है,
राज्य
ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन ये दुनिया वाला जो वैकुंठ में जो गणेश जी है वैकुंठ में पीठावरण देवता रूप में जो है वो कर सकते हैं। वैकुंठ में पीठावरण देव देविया बहुत है, तो वो ये दुनियादारी में जो देवता है ये संपूर्ण अलग है, लेकिन वैकुंठ में पीठावरण देवता रूप में जो सब सेवा कर रहे हैं कर रही हैं वो सब अलग है।
ये सब खाना पीना सब वो तो क्रिया होगी तो सभी क्रिया चालू है।
वहाँ पर भी ब्रह्मा जी है, वहाँ पर भी शंकर जी है,
वहाँ
पर भी गणेश जी है, ये सब भगवान के डायरेक्ट सेवक है, डायरेक्ट सर्विस है ये लोग। बंद कर रंगने क्या होता है
कहाँ
देखा
नंदगांव में काला है
काला
नंदगांव
कोई बात नहीं हम लोग जो काला सफेद लेकर के बैठे हैं ये वो ठाकुर जी के मन में ऐसा कुछ ही होगा जितना कलर है भगवान का कौन कलर है बोलो प्राकृत तो कुछ नहीं है तब भगवान का जो कलर वो कौन कलर है बोलो ये पहले जो बोला है नवीन निरदय श्याम नव जलधर कांति हाँ नवीन मेघ तो ही कलर है बोलो वही कलर कैसा होगा बोलो वही कलर कैसा होगा ये दुनिया का जितना चीज है ये सब चीज के भगवान के प्रकाश करने के लिए कुछ नहीं है निर्जीव जो कलर है हाँ सब रंग है उसमें ये सब कलर भगवान को सेवा करने के लिए तैयार है लेकिन भगवान जो कलर है भगवान का ये तो अप्राकृत है ये तो प्राकृत कुछ कुछ नहीं है तो कैसा कलर वर्णना करना है बोलो कृष्ण देवी पायन वेद व्यास जी स्वयं भागवत में भगवान का रूप वर्णना कर रहे हैं फिर भगवान होते हुए भी भगवान को पास क्षमा मांग रहे हैं क्यों अरे तुम तो अप्राकृत चीज है तुम तो सच्चिदानंद रूप है हाँ तो मैं तुम्हारा ये जो रूप वर्णना कर रहे हैं ये दुनिया वाले जितना लोक है ये तो सब गलती समझेगा मैं वर्णना कर रहा हूँ तो मुझको क्षमा करो भगवान होते हुए भगवान को पास क्षमा मांग रहे हैं का चीज है बोलो तो स्वयं वेदव्यास जी सब कुछ प्रकाश किया है वेद विभाग किया है हाँ पहले तो एक वेद था तीनों हुआ ऋक्षाम जुजु पीछे चारों हुआ ऋक्षाम जुजु अथर्व ये समझ में नहीं आता इसलिए उन्होंने खुद चिंता की हाँ क्या करना है कुछ व्याख्या देना पड़ेगा तो उपनिषद रचना किया है वेद का व्याख्या व्याख्या ग्रंथ उपनिषद उपनिषद एक दो तीन चार नहीं है कितना हुआ 1180 इतना संख्या हो गया पूरा रचना करके कौन चुनाव करके शिक्षा तत्व दर्शन लेना कौन लेगा समर्थ नहीं है इसलिए फिर संक्षिप्त कर दिया क्या कर दिया वेदांत दर्शन कर दिया पीछे महाभारत किया महाभारत रचना किया पीछे अष्टादश पुराण रचना किया देखा प्रकरण कौन सा है अंतिम में श्रीमद् भागवत प्रकाश किया वही तो है क्या हाँ वेद में जो कुछ चीज है तत्व दर्शन है वेदांत में जो कुछ है महाभारत में जो कुछ तत्व दर्शन है सब कुछ भागवत में डाल दिया कितना तत्व दर्शन है विद्या भागवतावधि एक लाइन चालू है कौन आदमी कैसा है कितना टैलेंट वाला है ये परीक्षा हो जाएगा भागवत के विचार लेकर कैसा उनको भागवत को विचार अनुभूति हुआ उसी से ही उनका विचार होगा इन्होंने कैसा पंडित है बोल रहे हैं कई वल्लंग नरक आए थे जितना निर्विशेषवादी लोग मायावादी लोग वो कई वल्ला लाभ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और संविधान में सरस्वती साहब क्या बोल रहे हैं कई वल्लंग न रखा जाती तो कई वल्ला ये सुन करके मेरा ऐसा ये होता है ये नरक गमन के प्रशस्त सरणी है सड़क है पीछे बोलना है तो कई वल्लंग न रखा जाती त्रिदश पूरा आकाश पुष्पायति त्रिदश पूरा आकाश में स्वर्ग कई कई स्वर्ग जाने वाला है स्वर्ग जाने वाली है ऐसा इच्छा कर रही अच्छा चीज नहीं अच्छा जगह नहीं है और नहीं जाना चाहिए क्यों जहाँ से सिर्फ पतन होगा पतन होता है नष्ट होने वाला चीज जो है वहाँ पर जाने से क्या फायदा है कुछ नहीं क्यों चेतन भुक्त व स्वर्ग लोकों में विचारण कि मैं पुण्य वर्ष लोकों में विचल पुण्य से स्वर्ग प्राप्ति होता है फिर पुण्य समाप्त होता है तो क्या होता है फिर ये जड़ में आना पड़ता है फिर यहाँ पर आकर के कर्म फल भोग करना पड़ता है क्या फायदा है वहाँ पर जाने के लिए उसने बोला त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आया थे ये क्या है ये ख पुष्प है आकाश कुसुम कभी नहीं हो सकता है आकाश में पुष्प कभी नहीं मिलता है ऐसा शब्द एक है असंभव कल्पना एक है त्रिदश पूरा आकाश पुष्प आया थे तो वो सर्व सुख जो है वो ऐसा है दुर्दंत इंद्रिय काल सर्प पटली प्रख्यात दंश्रायति इंद्रिय सुख जो है ये कैसा है ये सब कष्ट देने वाले ठीक है वो मेरा जरूरत नहीं है विश्व पूर्ण सुखायति ये विश्व सुख के आधार है शांति के आधार है ये ठीक नहीं है एकदम क्या चीज है इधर असुख है अशांति है वही लेकर के ये जगत को भगवान ने बनवाया कहाँ पर है ये बात है श्रीमद् भागवत में है तस्मादीदं जगदसि समसत्त रूपम सपना भवस्त भीषण पर दुख दुखम ये दुख दे करके ये सृष्टि किया है भगवान ने शांति के स्थान ये नहीं है वही बोल दिया भगवत ने ये मालूम पड़ता है विश्व पूर्ण सुखायते ये विश्व में पूर्ण सुख शांति मिलेगा नहीं कभी नहीं मिल सकता है विधि महेंद्रादिश्च पीजायते और महेंद्र पदवी कोई क्या बोलता है बहुत अच्छा है सरक सुख जैसा है महेंद्र पदवी जैसे है महेंद्र कौन इंद्र को बोलता है महेंद्र क्यों करिष्यति श्रीमद् भागवत में है इंद्र को कब बना किया था ना भगवान ने तब बोला था महेंद्र शब्द होशी है कृष्ण बोल रहे हैं होशी है तो हमारा कर्मचारी बहुत नीचे वाला एक कर्मचारी है उनको इतना दिमाग कहाँ से कृष्ण जी पूछ रहे इतना दिमाग कहाँ से है जानते नहीं है सर्वोपरि मरीख है अब तुम क्या बोल रहे हैं ये बचाव है ये ग्वाला बेटा एक ये बचाव है बचावा वृद्धवानी ना ऐसे बोल रहे हैं गाली दे रहे हैं इंद्र वही कृष्ण भगवान को गोपाल कृष्ण किससे मालूम पड़ा उसको कौन विधियों इंद्रादीश चकित जब कारुण्य कटस्थ वैभवतांग तंग गौरवे वस्तु ये जो तत्वदर्शन सब इनका कृपा से मालूम होता है ये तत्व ज्ञान लाभ होता है वही चैतन्य महाप्रभु से मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो भक्त लोग उनका प्राप्ति बहुत अच्छा प्राप्ति इसके बारे में दुनिया में जितना ये है उतनी बहुत है शांति जो लोग भगवत प्रेम प्रति लाभ किया है वो लोग के लिए दुनियादारी के सब कुछ सुखाती शिक्षा है अमृत तृप्त अमृत लाभ किया है जो लोग अमृत शक्ति में जितना आनंद है शांति है पूर्णता है ऐसा कोई चीज से नहीं तो जो लोग ऐसा प्राप्त कर लिया उसके बारे में सिर्फ और दूसरे किताब दूसरे ग्रंथ आलोचना करने का क्या फायदा जो लोग को सब कुछ लाभ होगी अगर असमर्थ प्रत्यक्ष जिन्होंने भागवत को आश्रय किया है श्रीमद् भागवत को जिन्होंने आश्रय किया है उनसे बढ़ा करके और कुछ सत्य सिद्धांत उसको कहीं नहीं मिल सकता यही बोल दिया भागवत है फाइनल जजमेंट लास्ट जजमेंट सबसे बढ़ा करके सत्य दर्शन कोई कभी नहीं बोल सकता भागवत जजमेंट है सबसे श्रेष्ठ जजमेंट सबसे विचार जो लोग भागवत सत्य सिद्धांत जिनका लिया है उनका दूसरे कोई किताब आलोचना करने से कोई जरूरत नहीं है नहीं बोलती अगर समृत दृष्टि नन्न प्रसाद रसिक दूसरे कोई ग्रंथ में उनका आशा आकांक्षा नहीं है ये कोई बोलना केवल भक्ति अनकंडीशनल सरेंडर अर्थ संपूर्ण अलग धर्मला जो कैवल्य जो है मुक्ति सर्वेशन वो अलग चीज है ये नस्तिकता है ये ठीक ही नस्तिकता है ये अच्छी चीज नहीं है भगवान के साथ बराबर हो जाता है भगवान के साथ डायडिशन मंत्री हो गया भगवान के साथ भगवान बनने चाहते उनसे असुर है नस्तिक है डेमन ये शिक्षक डेमन ये शिक्षक डेमन नस्तिक लोग जो ये सब असुर है असुर कौन है भगवान को सेवा करने मांगता है जो वो लोग भक्त है बहुभूत सद्गौ लोकस्मिन दैव असुर कृष्ण बोल रहे हैं कृष्ण भगवान गीता जी ने और जिनको बोल रहे हैं सखा और जिनको बोल रहे हैं क्या बहुभूत सद्गौ लोकस्मिन दैव असुर ये दुनिया में हमको देखते हैं क्या दो सेक्शन है दो सेक्शन टू सेक्शन ऑफ पीपल एक विष्णु भक्त हरे देव असुर सब भी भक्त भगवान जिन्होंने विष्णु भगवान को उपासना करते हैं हाँ तो लोग देवी भावापन्न है भक्त भगवान भक्त और एक उनका विरोधी भगवत विरोधी एलिमेंट जो है भगवान को भी नहीं मानते भक्तों को भी नहीं मानते भक्ति भक्ति को भी नहीं मानते ये लोग आसुरिक है ये लोग नस्तिक है उनको बोल दिया कृष्ण अपना मुंह से बोल दिया ये छोड़ करके तो दूसरे को मानना नहीं चाहिए भगवान खुद बोल रहे हैं दोष नहीं है ये दुनिया में, एक देवी भाव अपन में है अस्तिक भक्त लोग और एक आतुरी, यही दो और कई सेक्शन है, धनी दरिद्र ये सेक्शन नहीं है, ये राजनीति है वर्तमान जो पॉलिटिक्स है चल रहा है, सत्ता जो पॉलिटिक्स वही चल रहा है अभी, लेकिन शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। कृष्ण खुद भगवान कृष्ण स्वयं बोल दिया क्या, दो सेक्शन है, एक आस्तिक और एक भक्त, एक भक्त और एक अभक्त, यही बोल दी। कोई वल्ली का प्रयोजनम, ये जो कोई वल्ल है ये केवल भक्ति अनकंडीशन पर अंदर जहाँ पर है उसको ही बोला जाता है कि बोला ये अच्छा रखा गीता जी ने, ये श्लोक है कैवल्य का प्रयोजन, ये भाव भक्ति साधन भक्ति छोड़ करके भाव भक्ति प्रेम भक्ति को बोला है, ये जो कोई वही प्रयोजन के लिए बोला, ये रखा अलग है। निर्विशेषवादी का जो कैवल्य ये भगवान के साथ इकट्ठा होने का विचार है, वो नास्तिकता है, और ये जो कैवल्य ये भगवान को सेवा करने के लिए प्रचेष्टा साधन है। तो ये चेष्टा क्या है, दोनों चीज अलग नहीं, एकदम डाइवर्ट के लिए अभी एकदम उल्टा।
तो
সাধু মহাপুরুষের কারণ স্পর্শ করবার অধিকারী কি, সে অধিকার আমার সে দিচ্ছে, বা আমি যদি আমার স্বাভাবিক দৈন্য নিয়ে বসে আছি তাহলে একজন মহাপুরুষের পাশ স্পর্শ করবার ক্ষমতা আছে কিনা আমার, সেটা আমাকে আগে বিবেচনা করতে হবে। সেইসব নিয়ে সুন্দর আলোচনা আছে, যিনি পাশ স্পর্শ করতে যাচ্ছেন তার অধিকার, আর যার পাশ স্পর্শ করতে যাচ্ছেন তার বিচার ব্যাপার, এই নিয়ে আলোচনা আছে। করে দেখবে
আমি নামটা দেখেছি এখন প্রসঙ্গটা পড়েছি হয়তো মনে
হয় ওখানে ওখানে আছে, ওইখানে আমি লিখে যে কথাটা ওইখানে ওই সম্বন্ধে আছে লিখে আমি আমার দরজায় লাগানো আছে, পূর্বদের ওই ভাগ মানে যেটা খুশি প্রশ্নের উত্তরে বলছেন অহংকার, আমি একজন সাধু সন্তের স্পর্শ করতে যাচ্ছি এটার মধ্যে অহংকার,
দামি কথা আছে, দামি কথা আছে, দামি কথা
ঠিক ওই কথাগুলি আর যত কিছু কামনা বাসনা আকাঙ্ক্ষা এই সমস্তগুলো তো ভগবানের কাছে গিয়ে সাধু সন্তের কাছে গিয়ে লোকে সাধারণ লোক, তাতে সাধুর কিছু অসুবিধা হয়। তিনি যত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি হন না কেন, তাতে তার কিছু অসুবিধা, সেই জন্য ওটাকে অ্যাভয়েড করতে পারলে খুব ভালো। তবে স্পেশাল কেসও আছে, স্পেশাল কেস দিয়ে নাই চান, কেন আইন যখন আছে তখন আইনের সেটা বলছেন। এক জায়গায় আবার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, এক্সেপশনের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন, এক্সেপশন এক্সেপশন সেটা জেনারেল রুল নয়, সেটা নিয়েও আলোচনা করেছেন।
মহারাজ কালকে আপনি বলছিলেন হরিনাম সম্বন্ধে বলছিলেন, হরিনামের প্রথম যে আটটা দলিতা বিশাখা চম্পকনাথা অষ্টজন প্রধান সখী, তারপর আসবে বাকি প্রিয় নর্ম সখী, এইরকম করে সমস্ত সখী নিয়ে বাকি। তা এই হরিনাম করার এই সখীদের আনুগত্যে হরিনাম করা, তার এই যে হরিনামের থেকে প্রধান উদ্দেশ্য আমাদের তার কি কি উদ্দেশ্যে আমরা হরিনাম যখন করছি, তা এটা তো আমাদের যে নির্দেশটা রয়েছে মানে যেটা ইন্ডিকেশন করছি, মানে যেটা তো অনেক উঁচু ভালো কথা।
আমার নামের স্বরূপ প্রতিবাদ করি, আমি যাতে নামের স্বরূপ যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারি এবং সেই বিষয়ে কৃপা প্রার্থনা করা তাদের কাছে, এইটাই গরুদের এই হিচার রিচার্ট রিচারটা হচ্ছে। তাই সখীগণ যেভাবে রাধা গোবিন্দের প্রিয় সেবা করে, নাম কীর্তন লীলা কীর্তন, আমিও সেই অধিকার পেতে চাচ্ছি। তাই আপনাদের নিত্যানন্দ প্রভুর কাছে করতে হবে, মহাপ্রভুর কাছে করতে হবে, সবাই আনুগত্য নিয়ে নিব। তারপরে রাধা গোবিন্দের সেবা, আবার রাধা গোবিন্দের সেবা করতে গেলে রাধারানীর আনুগত্য করতে গেলে তারা কি সবজনের আনুগত্য, চিন্তা ভাবনাটা এইরকম রাখতে হবে। রাধারানীর কাছে পৌঁছলাম যখন তখন রাধারানী তুমি একজন কিঙ্করি অযোগ্য কিঙ্করি, এই হিসাবে তিনি সার্টিফাই করবেন ব্যাপারগুলো আছে, ব্যাপারটা এইরকম মানে আনুগত্য। বৈষ্ণব ধর্ম হচ্ছে আনুগত্যের ধর্ম, আনুগত্য ছাড়া কোনো কথা নেই। বৈষ্ণবতা মানেই হলো আনুগত্য, হরিগুরু বৈষ্ণবের আনুগত্য, এটাই হলো বৈষ্ণব ধর্ম।
যেমন
গুরুদেবের আনুগত্য প্রথম আছে, আজকে গুরু নিত্যানন্দ স্বরূপ, তথাপি নিত্যানন্দ তথ্য আছেন একজন, তখন আরো কৃপা প্রার্থনা করতে হবে। তিনি বলে দেবেন মহাপ্রভুকার ঠাকুর ঠাকুর আমার এই লোকটাকে ফরওয়ার্ড করা, সেই রকম মহাপ্রভুর কাছে ভেবে দিলেন। আমার গৌর নিত্যানন্দের কৃপা নিয়ে যেতে হচ্ছে আমার আমাকে সখীজনের কাছে, এমন সখী প্রিয় নর্ম সখী, হ্যাঁ নর্ম সখী মঞ্জুরি যিনি হোক তার কাছে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। সেখান থেকে ক্রমশ ক্রমশ চ্যানেলে আমাকে যেতে হচ্ছে, খাতে ওই আসতে হচ্ছে, সেখান থেকে রাধারানীর কাছে পৌঁছে দেবেন। তিনি যেটা বলে দেবেন সেই অনুসারে কৃষ্ণ রাধার দাসীর কৃষ্ণের কথা হচ্ছে, সম্পর্ক সম্বন্ধ জ্ঞানের কথা হচ্ছে, কৃষ্ণকে রাধার দাসী
साधारण बातचीत कर कटा बोला कृष्ण के वार्ष भानवी जयंत दास একজন তিনি তার পরিচয় দিচ্ছেন বার্ষভানবী দ্বৈত দাস। বার্ষভানবী হচ্ছেন কে? কৃষ্ণানন্দিনী রাধা। তার দ্বৈত প্রিয় কে? শ্রেষ্ঠ কে? কৃষ্ণ। তার দাস আবার দাস শব্দ বলি হয় সেদিন দাসানুদাস দাসানুদাস এরকম বলা আমি ভগবত দাস সেটা বললে অহংকার থেকে যায়। এখন আমি ভগবানের দাসের দেখানো দাস বললে অহংকারটা কম থাকে। আর যখনই অনুগত থেকে সরে যাচ্ছি দূরে যাচ্ছি তখনই আমার লেগে দিচ্ছে অনুগতের চ্যানেল আছে সেই চ্যানেলে দিতে হবে।
যেমন গুরুদেবের
গুরু বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয় আমার এই বিচারটা তো আছে। আবেদন নিবেদন রেকমেন্ডেশন এসব কথাগুলো আছে। আমি তো ডাইরেক্ট যেতে পারি না, ডাইরেক্ট যাওয়ার ক্ষমতা নেই, অধিকার নেই, ডাইরেক্ট যাওয়ার ক্ষমতা নেই, অধিকার নেই। অনগত্যের ধর্মই হলো বৈষ্ণব ধর্ম। অনবস্থাবিহীন যে ধর্ম সেটা অবৈষ্ণব ধর্ম। ভাগবত পাঠ করছিল, পাঠ করবার সময় দেখা গেল কিছুক্ষণ পরে পাঠক দিয়ে চুপ করে গেল, আর কিছুক্ষণ পরে করে উঠল, মানে খুব একটা কিছু কষ্ট হয়েছে একটা, তারপরে বন্ধ হয়ে গেল পাঠ, বন্ধ হয়ে গেল। জিনিসটা কি, তিনি পাঠ করছেন এমন জিনিস যে জিনিসে তার পূরণ এসে তত্ত্বের পূরণ, সেই এটা তিনি প্র্যাকটিক্যাল ওটা তুমি আমি দেখছি থিওরিটিক্যাল কিন্তু না প্র্যাকটিক্যাল ওটা। তিনি রান্না করেছেন, পায়স রান্না করেছেন, ভাগবত পাঠ করছেন সেখানে পায়স রান্না করার আজ সরঞ্জাম কিছু নেই, চাল নেই, দুধ নেই, মিষ্টি নেই, কিছুই নেই, চিল্লি নেই, কড়াই নেই, কিছু কি হচ্ছে? কিন্তু তিনি পায়স রান্না করেছেন, রান্না করে একটা বাটিতে ঢেলেছেন, খুব গরম জিনিস ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, অপরাধ, আমরাও খেতে পারি না, মুখ পড়ে যাবে, আঙুল পড়ে যাবে, সেখানে দেখে দিচ্ছেন তা আঙুলটা যতটা ডুবিয়েছেন পায়েছে ঠিক ততটাই পুড়ে। কিছুক্ষণ পরে শ্রোতা যারা বলেছিলেন তারা বললেন কি হয়েছে? না কিছু হয়নি, না কিছু হয়নি বললে তো হবে না, যেমন শব্দটা করে উঠেছেন তাতে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ হয়েছে, করে উঠেছেন। তারপর বললেন দেখো তো আমার আঙুলটা দেখো তো, দেখেন আঙুলের অর্ধেকটা পুড়ে গেছে। কি হয়েছে? সেখানে তো কিছুই ছিল না, তো ঘটনা তো প্র্যাকটিক্যাল। এই যে সেবাটা সঠিকভাবে ভাব সেবা খুব উন্নত অধিকারে এই জিনিসটা হয়। কেউ ঘন্টা নেড়ে ঠাকুরকে দিচ্ছেন, ঠাকুর খাচ্ছেন কি না খাচ্ছেন সে তার নিজের অতটাই আইন অনুসারে সে চলে যাচ্ছে। আবার আরেকজন তিনি দিচ্ছেন তার অত সাতসঙ্গম দরকার নেই, তাহলে তিনি দিচ্ছেন, তিনি বুঝতে পারছেন যে হ্যাঁ ঠাকুর এটা গ্রহণ করছেন। আর প্রাথমিক যে সে বুঝতে পারছেন ঠাকুর খাচ্ছেন কি না খাচ্ছেন, মাঝে তিনি আছেন তিনি বুঝতে পারছেন হ্যাঁ ঠাকুর খাচ্ছেন, কিন্তু তার অত সাতসঙ্গম নাই, ষোড়শোপচার নাই,
কর্মপ্রচার আছে। আর একজন আছেন, তিনি যেখানে ব্যবস্থা আছেন সেই অবস্থায় ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে দিচ্ছেন, ঠাকুর সেই অবস্থায় খেয়ে অধিকার অধিকার। এখন এখানে আগে কিরকম পদ্ধতি ছিল ব্রাজে একটা কথা, পরবর্তীকালে এরা যে প্রসেস অ্যাডপ্ট করছেন সেই জিনিসটাই বা কতটা সুবিধা সংক্ষেপ সেটাও বিচার করতে হবে। শাস্ত্রকে বাদ দিয়ে তো কিছু নয়, শাস্ত্র হচ্ছে মাধ্যম, সমস্ত থিওরির মাধ্যম শাস্ত্র, ভালো মন্দ সব শাস্ত্রের বিচার শাস্ত্র। তিনি যতটুকু অ্যাডপ্ট করেন না কেন, কিন্তু অধিকার অনুসারে আচ্ছা ছেলে ছেলে মানুষকে একটা অঙ্ক করতে যাওয়া হয়, সেটা অনেকগুলো লাইন করলে অঙ্কটা, ওই অঙ্কটাই আরেকজন করলেন খুব সংক্ষেপে করলেন, আর একজন তিনি আর কারো থেকে আমি লাগছে না, ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে লাগছে না, মুখে মুখেই বলে দিচ্ছেন অ্যান্সার। সবগুলো অধিকার সমান হলো না, তো অধিকার আলাদা আলাদা পৃথক পৃথক অধিকার। তো ওই রকম মিউচুয়াল সাইডেও ওই রকমই আছে, এদিকে যেমন আছে মেরিটের দিক থেকে ইন্টেলেকচুয়াল ইন্টেলেকচুয়ালিস্ট যারা আছেন তাদের বহু কিছু ওরকম আশ্চর্য ব্যাপার দেখা যায়, সকলের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না, এটা এই জগতেই দেখা যাচ্ছে। এটা স্পিরিচুয়াল সাইডে ওরকম আছে অধিকারের মধ্যে, তাকে একটু বেশি খাটতে হচ্ছে, তাকে কম কম পরিশ্রম করতে হচ্ছে, আর কেউ এমনি মরণের দ্বারাই তার রিয়েলিটিতে আসছে, ওটাকে অস্বীকার করা যাবে না। রিয়েলাইজেশন ওই জিনিসটা আছে বাস্তব ক্ষেত্র, তাকে অস্বীকার করলে হবে না। এই সংসারে প্রতিনিয়ত প্রতি মুহূর্তে কত জিনিস যে ঘটছে আমাদের চোখের সামনে, আমরা সব থেকে বিচার করি বিচার করি না, কিন্তু একজন বৈজ্ঞানিক একজন চিন্তাশীল মনীষী তিনি প্রতি মুহূর্তে নূতন নূতন সব জিনিস তিনি দেখতে পাচ্ছেন এবং তার সন্ধান পাচ্ছেন, সকলের পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমার চোখের সামনে কত ফিল্ম চলে যাচ্ছে আমি তো বুঝতে পারি না, বাচ্চা ছেলেদের যেমন উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয় সিনেমাটোগ্রাফ, তার সামনে দিয়ে কতগুলো ছবি বেরিয়ে যাচ্ছে যত যারা চোখে দেখছেন তারা হিসেব জানেন না, কিন্তু আমরা পড়ছি যে এক মিনিটের মধ্যে মানে হাজার হাজার ছবি বেরিয়ে যাচ্ছে আমার চোখের সামনে দিয়ে। একটা লোক বসেছিল তাকে দাঁড়ানো প্রস্তাব করতে গেলে কত ছবি লাগে সেটা হচ্ছে, তো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে সে দৌড়ে যাচ্ছে, সে প্রস্তাবটা দেখাতে গেলে কতগুলি ছবি লাগে একসঙ্গে সিনেমাটোগ্রাফি যা হয়। তা সাধারণত ওটা বিচারের মধ্যে নেই যে আমার চোখের সামনে দিয়ে মিনিটে সাতশো আটশো হাজার দেড় হাজার ছবি সরে যাচ্ছে, সেই বুঝতে পারছি, কিন্তু ঘটনা তো সত্য কিন্তু কয়েক বিশ্বাস তো করতে পারছি না, আমার চোখের সামনে যে এতগুলি ছবি প্রতি মুহূর্তে মুহূর্তে সরে যাচ্ছে ওটা ফ্যাক্ট। এইরকম ধরনের পারমার্থিক সাইডেও ওইরকম সব জিনিস আছে যেগুলো আমাদের নোটিসের মধ্যে আসে না, ধরা পড়ে না, তিনি চিন্তা করলে চেষ্টা করলে পরিশ্রম করলে যা আছে প্রসিডিওর সেগুলো অ্যাডপ্ট করলে হয়তো পাওয়া যাবে, ধরা আমাদের মধ্যে আসবে। সকলের সব জিনিসটা যে স্ক্রিনের মধ্যে আসবে এমন কিছু না, কিন্তু আছে জিনিসগুলো চলছে, জিনিসগুলো আছে, তত্ত্বদর্শন আছে, যার যেমন মেরিট যার যেমন ক্ষমতা যার যেমন ট্যালেন্ট তিনি অনুসারে ওটা ধরা পড়ে। নতুন কর্ম করার ফল যোগ হতে পারে, ভগবানের নাম করলে প্রারব্ধ সব নষ্ট হয়ে যায়, এ কথা আছে। প্রারব্ধ কর্মে কি বিরোধী বেদ, বেদ বলছেন যে ভগবানের নামের দ্বারা শুদ্ধ নাম উচ্চারণের দ্বারা প্রারব্ধ সব খণ্ডন করি, এটা আছে আমাদের পক্ষে আইন আছে, আমাদের পক্ষে আইন আছে,
दूसरे सवार स्टेशन अरे सर उन्होंने स्टेनर दी आतंकवादी वाले বেলা দুটো এটা ওর সময় দরজা নক করছে। এখন দুপুরবেলা আমাদের ঠাকুরের আরতি আরতি হয়ে গেলে সব লোক চলে গেল, ঠাকুরের দরজার মেন গেট বন্ধ হয়ে যায়। বেলা দুটোর সময় তখন নক করছে, আর সেই মিনিট সব এরা সব বিশ্রাম করছে। আর দরজার পাশে থাকি আমি অফিস পাহাড় লাগ এই দরজাটা খুললাম, খুলে দেখি থাকি ঘরে দেখে বসালাম কিছুক্ষণ পরে। আমার খুব একটা দুশ্চিন্তা দুর্ভাগ্য, আমার এটা কোনো সলিউশন কিছু আছে বলুন কি? আমি তো বহু লোককে সাজা দিয়েছি, স্টেশন যাও জানি অনেক লোককে সাজা দিয়েছি, ভুল করেছি আমি অনেক, কেন আমি তো আইনে চলেছি, আমি তো ভগবান নেই, আমার ভূত ভবিষ্যৎ দর্শন নেই, আইনের বই পড়েছি পাস করেছি, সেই হিসেবে আমি বিচার করছি, আইনেতে বিচার করতে হচ্ছে আমার। তা বহু লোককে অন্যায়কারীকে হয়তো সাজা দিয়েছি, আবার বহু ভালো মানুষরা হয়তো সাজা পেয়ে গেছে। তা আমি এখন খুব কষ্টের মধ্যে আছি, সেই সব মৃত প্রেতাত্মা আমাকে সবসময় দেখাচ্ছে। এর থেকে আমার রেহাই কি আছে? হ্যাঁ রেহাই আছে, নমস্কার, কি ব্যবস্থা বলুন? নাম করব, কি নাম করবো? এই নাম করব, এই নাম করবো,
এইটা কি, এই নামটা কি?
হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, এই তার ব্রহ্ম নাম আপনি মনে করেন কিন্তু উদ্যাপনটা করেছেন আইনে তো করেছেন, সুতরাং এটা স্পিরিচুয়াল সাইডে তো ঠিক হয়নি, সেই জন্য আপনাকে লাইবল হতে হচ্ছে। বললেন এইটাই প্রাশ্চিত্য, আমার হ্যাঁ এইটাই শ্রেষ্ঠ প্রাশ্চিত্য, এর থেকে ভালো প্রাশ্চিত্য কিছু বেদে পুরনে শাস্ত্রে কোথাও লেখা হয়নি, এইটাই শ্রেষ্ঠ প্রাশ্চিত্য, পরীক্ষা করে দেখুন আপনি। তারপর নাম করতে লাগে, তখন আমার গুরুদেব ছিলেন মথুরা, এই এই সাইডে এই দিকে ছিলেন, আর উনি যখন গেলেন তখন তিনি তার কাছ থেকে মন্ত্র নিলেন। আবার
কারো কাছে থেকে?
হ্যাঁ
কারো কাছে থেকে মন্ত্র নিলেন?
আমার গুরুদেবের কাছে।
ও
উনি যখন ফিরে গেলেন কি ব্যাপার? যে ভদ্রলোকের এত ভয়, সেই সব মৃত প্রেতাত্মা তারা এসে ওকে দেখাচ্ছে ভয়, যার জন্য অস্থির হয়ে যাচ্ছেন, ওনাদের রাত্রে ঘুমাতে পারি না। তা এখন প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ যা কিছু আছে, এর তো একটা ইতিহাস আছে, সুন্দর ইতিহাস আছে।
তারপরে
ওটা পূর্বের জমা আমাদের সকলেরই কমিটি থাকতে পারে, আবার নূতন কর্ম আমি করছি, আমি তো চুপ চুপ করে বসে নেই, আমি নূতন কর্ম করছি, এই কর্মেরও তো আফটার ইফেক্ট আছে, তারও তো ভালো খারাপ দুই ফল আছে, তো সেটাও আমার জমার ঘরে আসছে, তো দুটোই তো চলছে। কিন্তু শাস্ত্র বলছেন যদি কেউ ঠিক ভালোভাবে কেনেকেটে যদি নাম করেন অন্তরের সঙ্গে, তাহলে তার প্রারব্ধ অপ্রারব্ধ সব কিছু শেষ হয়ে যায়, তার কোনো কর্মফল ভোগ করতে হয়। নামের ফল এত বলছেন যদি অশ্রদ্ধায় ফেলায় যদি আমি নাম করি তাহলে সেখানে ফল হয়। শাস্ত্রে প্রশ্ন করা আছে যারা ভগবানের নাম করে না তাদের মুক্তি তাহলে কি করে হবে, শাস্ত্রে প্রশ্ন করা আছে।